हेलो, गुड मॉर्निंग। और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपको इनवाइट करते हैं कैमरे में आने के लिए। बहुत खास है इस समय रिट्रीट में रहना, और हम सोचते हैं कि नई कॉन्शियसनेस, और हम कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं इसमें। फिलिप रैंडोल्फ, अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, वे कहते हैं कि स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती, इसे जीतना पड़ता है। इसीलिए सीताओं को हिम्मत का एक कदम लेना पड़ेगा, वह निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। और ऐसा एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने भी कहा है कि मूर्खों को उन चेन्स से छुड़ाना बहुत मुश्किल है जिस जिसको वो पसंद करते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम खुद ही, किसी ने कहा है कि हम खुद ही अटैचमेंट में फंस जाते हैं, वो बंधन क्रिएट करता है, फिर भी वो काम नहीं करता है, या काम करता है तो भी हम फंस जाते हैं। तो ये साइड है ड्रामा का, ये गेम है। और ऐसा भी है कि हम सब सीताएं हैं, ये सीता रानी भी है, महारानी। और हमारा सीताओं का हमारा ये नेचुरल नेचर भी है। एक रोचक रेफरेंस है गांधी की पॉलिसी का, जिसमें नो कोऑपरेशन और अहिंसावाद था। ऐसा नहीं करना है कि हम रावण को खुश करेंगे स्टोरी में, उसको खिला के, उसको खुराक दे के उसका सिर बड़ा नहीं करना है, कुछ टेम्परेरी समय के लिए, क्योंकि फिर उसकी डिमांड बड़ी ही होती जाएगी। तो ऐसे ट्राई करना है कि किसी एक सिर को रावण के छोटा करते जाएं और असली शांति का अनुभव करते हैं। तो अपने माइंड को यूज ना होने दे किसी भी रावण के सिर से। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं, और हम जानना चाहेंगे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और या कोई सवाल हो, और हम इंतजार करते हैं चैट में। बहुत बढ़िया है आपके साथ अभी, और वेलकम करते हैं प्रशांत को। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। और हेलो, हम इतना नए साल पर महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमारा जोर है नई जीवन पे, खुशी वाली जीवन पे। और हम ऐसा ट्राई ही करेंगे, ट्राई करते हैं, क्योंकि वरना ऐसा हो जाएगा कि एक रावण का सिर दूसरे रावण के सिर को नए साल की बधाइयां देगा। तो ये बहुत सक्सेस, सफलता हो जाएगी यदि रावण को हटा दिया जाए। और जैसे कि सारा ने इस पे पहलू पे जोर दिया कि बंधन और उससे मुक्त होने के लिए, और कुछ पोएट्स ने भी, राइटर्स ने भी इस पे बल दिया है, और सही ही है, क्योंकि जब हम बंधन में नहीं होते हैं, या फिर आप स्वतंत्र नहीं होते हैं, जब आप दास होते हैं, तो हमसे ज्यादा आशाएं नहीं की जा सकती, और हम फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो मास्टर है स्वामी है उसको उसे अलाउ करना पड़ेगा। हम ये एक बड़ा मैप देख रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। ये एक बहुत अच्छा पहलू है हम सभी के लिए कि जब हम ये चींटियों के चींटियों के पर्सपेक्टिव में दृष्टिकोण में फंस जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ईगो कौन है, क्या नॉर्मल है, ये कंसेप्ट ही नहीं समझ नहीं पाते। लेकिन जब सब कुछ ये पहलू अगर हम बदल के बड़ा कर देते हैं तो समझ जाते हैं। एक के भाषा यूज करते हैं, एक सेकंड का खेल, जिस चीज की भी जरूरत है वह इसकी कि बस एक सेकंड में एक स्टेप हम पीछे ले, वरना ऐसा फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो ये समझ जाए कि क्या नॉर्मल है और क्या एक्चुअली नॉर्मल है और क्या हर दुनिया हर एक के लिए नॉर्मल है, दोनों में अंतर क्या है। प्लीज फील फ्री। और मैंने ये नोटिस किया कि कल के विषय से कुछ प्रश्न मैं खुश हूँ डिस्कस करने के लिए। एक है, कितना समय लगेगा संजीवनी को काम करने के लिए मेरे मेरे गलत आइडेंटिटी पे। हमें क्या ऐसा खास लर्न करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सिर तो बहुत बड़े हैं। हाँ उत्तर में कहा गया, हाँ इसमें एक हम ये आइडिया ग्रास्प करते हैं। पहला पहला उद्देश्य रहता है कि हम मालिक बने, फिर हम डिटेल काम करते हैं। तो ये एक यात्रा है, जीवन की यात्रा है। अलग अलग चीजें चलेंगी लेकिन हम ये निचोड़ ले लेते हैं। इस जाल से एक समझ से निकलने की एक ग्रास ले लेते हैं और हमारे पास चांस होएगा इसमें कुछ और डिटेल्स जान। अभी आइए हम लोग कुछ समय क्रिएट करें अनुभव के लिए। हमारा पुरुषार्थ बहुत बहुत सिंपल है, अदृश्य खिलाड़ी इस समय इस मोमेंट में ये समझता है कि वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। उसकी जो दुनिया है वो अलौकिक है, दुनिया भी नहीं है और उसके लिए ये नॉर्मल है। सूक्ष्म रहना नॉर्मल है, खुद को एक जो महीन ज्योति बिंदु समझना नॉर्मल है उसके लिए, अविनाशी रहना नॉर्मल है उसके लिए, कहानी से पूरी तरह स्वतंत्र रहना नॉर्मल है उसको। ये समझना कि जितना भी फिजिकल दुनिया जो कल हुआ और जो आज हो रहा है वो सब एक कहानी में चल रहा है। नॉर्मल है ये जानने के लिए कि उसको इस कहानी की दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ही यही है और जो स्टार्टिंग पोजीशन शुरुआती स्थिति है वो यही है। इस मोमेंट पे इस पल में अदृश्य खिलाड़ी यह समझता है और इसको अनुभव करता है। उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है सुप्रीम स्काई में रहना। हम ये सब इसी पल ही अनुभव कर रहे हैं। एक विस्तार है लाइट का। ये नॉर्मल है इस आत्माओं की परिवार को बिलोंग करना। ये सच्ची फैमिली है। जो अदृश्य खिलाड़ी है उसके लिए ये मेडिटेशन नहीं है, और ये उसका जीवन ही है, उसकी दुनिया ही है ये, इसलिए इसके लिए नॉर्मल है, स्वाभाविक है। तो उसको कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि वो क्यों निराश हो। तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको जरा भी नुकसान पहुंचा सके। इसी कारण वो पूरी तरह से निश्चिंत है और उसका जीवन खुशी का है। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। सब इसी दुनिया के हैं, कोई भी कहानी की दुनिया का नहीं है। कोई भी एक आत्मा ऐसी नहीं है जो कहानी को बिलोंग करती है। कहानी एक एक्स्ट्रा चीज है। सारे सुंदर हैं और सारे भाग्यशाली हैं। और अगर यहाँ पे कोई रावण नहीं है, यहाँ कोई राक्षस नहीं है, तो फिर ऐसा ये क्षेत्र दिव्य बन जाता है। और जितने भी बीइंग्स हैं, जीव हैं यहाँ पे, स्पीशीज, ये भी डिवाइन दिव्य है और एकदम साफ, ऑथेंटिक, शुभ है। सभी ऐसे हैं और हमेशा के लिए। बस एक स्टेप, एक कदम यह अदृश्य खिलाड़ी लेता है, वो कॉन्शियस हो जाता है और फिर वो ऐसा खोज करता है किसी बड़े इनाम की। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, हम ये याद रखें कि हम इस बेहद खूबसूरत सच को याद रखते हैं। धन्यवाद। आइए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलें। हम बहुत पसंद करते हैं इस इमेज को जो हम अपने डिस्कशंस में यूज करते हैं। अगर इसका फोटो लिया जाए तो ये एक माइंड का, मन का फोटोग्राफ नजर आएगा। और हम ये देख रहे हैं कि अभी वर्तमान समय जो फोटो है, हम ऐसा पाएंगे कि बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के ईगो हैं। अभी इस समय, इस पल, आप अपने से ये प्रश्न पूछें कि आप क्या समझते हैं कि ये आई कौन है, जो आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई गई है, उस आधार पर ये फील कीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप कोई पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो इस कहानी की दुनिया को देख रहा है। या फिर आपके मन में कोई ऐसी छवि है जो जॉब पे बेस है, घर पे बेस है, या फिर आप पिता हैं, दादा हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर आप कोई मैनेजर। ये सब हर प्रकार की अलग आइडेंटिटीज हैं। तो आप अपने आप से पूछें कि क्या चल रहा है। ये हमारे होमवर्क है कि हम इस फंक्शन को, प्रक्रिया को चेक करें। इसी के साथ में एक एंगल ऐसा है कि पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बड़े मैप को देखना है और यहाँ से इस पूरी स्टोरी कहानी को देखना है, और ये जो आत्मा है सोल, वो कहानी शुरू होने से पहले से ही इसे प्रशांत के स्टेज पे आने से पहले ही ये आत्मा है। और इस पूरे ईगो और आइडेंटिफिकेशन का मजाक ही उड़ा रहा है ये, सिर्फ पढ़ने वाला एकेडमिक आई नहीं है, लेकिन हमें ऐसे महसूस करना है कि हम ये रियल आई। देखते हैं जैसे कि मैरी है वो ड्रामा में एक्टिंग कर रही है, और कुछ समय के लिए ड्रामा में गई और वापस आ गई। और हम ऐसे देखते हैं कि अगर वो कैमल का पार्ट प्ले करती है तो अपने आप को कैमल समझती है, तो इस पे तो अपनी हंसी आएगी। जो दृश्य एक्टर है वह इससे पास हो रहा है, स्टोरी से अपना पार्ट एक्ट कर रहा है मिस्टर हैरी का, और उसी समय पे ऐसा होता है कि वह स्टोरी की दुनिया में और फंसता चला जाता है, अपने बंधन क्रिएट करता है। और पहली चीज ये है कि सोसाइटी इसको सपोर्ट करती है, वो कहेंगे हाँ हाँ ये तुम्हारा है ये मेरा है, तो एक तरीके का संगठित मैसेज गड़बड़ है और सब एक साथ नीचे की तरफ चले जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि भीड़ गलत नहीं हो सकती, ये वर्तमान समय की सोच है, और सब नीचे गिरते जाते और हम एक बहुत हद से ज्यादा मजाकिया सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। ऐसा ऐसा देखते हैं कि कोई भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं है, कोई ऐसा नहीं समझता कि सब ऐसा समझते हैं कि हम होशियार कैमल है ऊंट है, लेकिन एक्चुअली ये होशियार फरिश्ते हो सकते हैं, लेकिन ईगो इससे उनको डिप्राइव कर देता है, वंचित रखता है। ईगो ईगो अपने डेन में रह के सोचता है कि ये लोग क्लेवर, हम सभी होशियार के अंदर से। और वे और भी ज्यादा अटैचमेंट्स और ईगो क्रिएट करते जा रहे हैं और सिर बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये सब ये डिफरेंट जो आई हैं उनके द्वारा दिखाया जा रहा है, और हम बिजी हैं उसको खाना खिलाने में और वो बड़ा होता है, और सभी इसी ही दिशा में बहुत तेजी से जा रहे हैं फुल स्पीड से। हमारी जो शुरुआती स्थिति है वो ये है, हम सभी सोल कॉन्शियस थे, फुली आत्म स्थिति में थे, हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में यही समझ सकते थे कि हम कभी भी कैमल नहीं बन सकते, ऊंट नहीं बन सकते। ऐसा भले कहते हैं कि ऊंट की बड़ी अच्छी नाक है, पर ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि हम खुद ही कैमल बन जाएंगे। और हम ये बहुत स्पष्ट रखते हैं कि हम मैरी हैं, और यही दिखाया जा रहा है इस चित्र के द्वारा। ये जो चिन्ह है और जैसे जैसे ईगो बढ़ता जाता है तो आत्मिक स्थिति कॉन्शियसनेस ये छोटी होती जाती है, उस लिहाज से हम खोते जाते हैं, हमने इमेज देखी रावण। रावण एक तरीके का साइको ड्रामा प्रदर्शित करता है, वो ये दिखाता है कि कैसे ईगो कि कैसे इसके पास एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका है, और तो कोई बढ़िया है, कोई पोयम क्रिएट करेगा, फिलोसफी क्रिएट करेगा, धर्म आदि हैं, तो वे सब रावण को हराने में मदद नहीं करते हैं। और हमें प्रॉपर समझ चाहिए इस खेल की। रावण को एक तरीके से बढ़िया प्लेयर कहा जाएगा और हमें खुद बहुत अच्छा होना पड़ेगा उसको हराने के लिए। और हमें दुश्मन की मजबूती भी समझनी पड़ेगी, ये क्या जब भी हम वॉर में होते हैं, युद्ध में। वर्तमान समय दुनिया में कोई भी समझ नहीं है, सभी व्यस्त हैं। जो फिलॉसफी में है वे अलग कोई आइडेंटिटी क्रिएट करने में व्यस्त होंगे, कोई ऐसा फिलोसोफर होगा जो कहेगा कि मेरे को इतने ज्यादा प्राइजेस मिले हैं, किसी को बड़ा ईगो हो सकता है प्रोफेसर का कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, तो ये सब चल रहा है वर्तमान दुनिया में। और इन सब के बीच में हम ऐसा समय क्रिएट कर रहे होंगे समझ का, और एक तरीके से रिमाइंडर्स और रिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं, और हम सबको रिविजन की और रिमाइंडर की जरूरत महसूस हो। बहुत बढ़िया, किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है? अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि कलेक्टिव संगठित रूप से मैस दलदल सा बना हुआ है, जो पूरे जीवन हमारी खुशी ले लेता है और पूरी पूरा समय ही खत्म हो जाता है इससे पहले कि हम ये समझें कि ये सिर्फ एक खेल है। बहुत वंडरफुल रिमाइंडर है ये, हम इस ऑप्शन को ऑब्जर्व करें। एक प्रश्न है कि रावण के माया के काम में और स्वतंत्र यात्री के काम में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है? उत्तर में हम रावण को कहानी में फंसे हुए ईगो के रूप में समझते हैं, और जब हम ये अलग अलग आइडेंटिटीज देख पाते हैं, हम ये आपको कह रहे हैं कि अभी आप ट्राई कीजिए उसको साक्षी होके देखिए, किसी समय पे आप अपने आप को एक माँ के रूप में देख रहे होंगे, तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं। जब इसमें होशियारी है माया की, तो होशियारी होती है खुद को जस्टिफाई करें ईगो को, ये भी आप साक्षी होकर देखिए कि ये माया है। हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं ईगो का, आइडेंटिटी का। जैसे किसी ने कहा कि उसकी माँ गुजर गई और वो कहती हैं कि जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वो खुश होती, अपने काम से डील कर रही होती, सब अच्छे से कर रही होती, वे मजाक भी करती हैं और सब कुछ कंट्रोल में अच्छा रहता है। जब घर जाती तो वे रोती ही रहती। वो अपनी माँ को याद करती हैं और वो बहुत होती हैं। तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? आप टाइप कर सकते हैं। क्या आप ये समझा सकते हैं कि इस स्थिति में इस बहन के साथ क्या हो रहा है? वह अपनी माँ से अटैच्ड है और जो यादें हैं माँ की, वह घर में एक्टिव है और कार्य व्यवहार जो ऑफिस का है वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है और माइंड उसका काम में बिजी है और घर में आके वो माँ की मेमोरी पुल हो जाती, खींच जाती। जब वह कार्य व्यवहार में ऑफिस में रहती है तो जो जो डोमिनेंट आइडेंटिटी रहती है वह ये रहती है कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे दरवाजे पे मैनेजर का टाइटल लिखा हुआ है और उस आइडेंटिटी में चीजें सभी बढ़िया चल रही हैं मैनेजर के लिए। जब वो घर आती है घर उसको ये याद दिलाता है कि वो बेटी है, तो फिर एक बेटी की आइडेंटिटी से घर आती है क्योंकि क्योंकि वहीं वे अपनी माँ के साथ रही हैं और बड़ी हुई हैं, तो माँ की वहां आइडेंटिटी है। तो मदर तो खुद बाहर नहीं है लेकिन जो आइडेंटिटी है बेटी होने की वो अब डिस्ट्रॉय खत्म मतलब विनाश हो गई है। इधर वह खुद ही ऐसा बताती है कि मैं इसे कैसे समझू, मैं वहां तो पूरी नॉर्मल रहती हूँ लेकिन घर आती घर एक आइडेंटिटी लेकर आ जाता है। दूसरे बंदे ने कहा कि जब वो स्कूल में था 10 साल का था वो बहुत खुश था अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ सब उसे पसंद। एक बार वह टीचर के साथ था अपने माता पिता और दोस्तों के साथ था स्कूल में, पेरेंट्स स्कूल गए हुए थे विजिट किए थे और इसके इन सब के बीच में था वो। सो इन सब के बीच में था और उसको लकवा हो गया, वो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो अलग अलग डिफरेंट आइडेंटिटीज, किसी टाइम पे वो स्टूडेंट था, किसी टाइम पे वो बच्चा था, किसी टाइम पे वो फ्रेंड था, तो ये सारी चीजें एक साथ होंगे। तो आप ये इसको देखिए कि जब कुछ गलत हो जाता है तो किस प्रकार आइडेंटिटी रिएक्ट करती है। अगर कोई आइडेंटिटी इस पे बेस्ड है कभी किसी वैल्यूज पे या गुणों पे बेस्ड है, किसी कुत्ते पे या फिर जूतों पे बेस्ड हो सकती है, तो ये ऐसी वर्तमान स्थिति है। क्या हम किसी अलग सब्जेक्ट पे बात करें, विषय पे? मोटे तौर पे कहाँ दर्द फिट होता है? पहले हम ये देखना चाहते हैं हम प्रकृति पे हम ये नेचर पे प्रकृति की बेहद की डेफिनेशन पे जाते हैं। जैसे ये यूनिवर्स में भी कहा जाता है कि नेचर आपकी मित्र है, प्रकृति आपका मित्र है। सारे जो नियम हैं प्रकृति के, वे हमारे फेवर में। कैसे हम इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई बता सकता है? क्या आप एक कारण दे सकते हैं कि प्रकृति हमारी मित्र है? अगर आप सही उत्तर देंगे, अच्छा रिव्यू, तो आपको शायद इनाम मिले। ये हमें पालन करती है हमारी, हमें हमेशा देती रहती है, हमसे कनेक्टेड रहती है, हमारी सेवा करती है। हमें महसूस होता है कि वो हमारा दोस्त है, मित्र है, वो कोई शर्त नहीं रखती। एक कारण जो मैं कहूंगा कि हम जीवित हैं, बस इतना बहुत अच्छा है। हमारा बहुत अच्छा स्वास्थ्य है और हमारा बहुत कृतज्ञता है उसके प्रति। अगर नेचर अलाइनमेंट में नहीं होती तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होते। और जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से वो गुजरती है मदर नेचर, हमें जिंदा रखने के लिए, जैसे एक छोटा सा स्क्रैच या कट भी हो जाता है, मिली सेकेंड्स में ही जो प्रकृति का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है उसको हील करने के लिए। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक क्लॉट क्रिएट कर, पपड़ी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। कुछ रेटिन नेटवर्क क्रिएट होता है, फिर नया स्किन आता है, सही तरीके के केमिकल्स होने चाहिए। और प्रकृति के पास ऐसा पूरा प्रक्रिया है हील करने के लिए। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर तो शायद डॉलर्स आपसे चार्ज करें, फीस ले, लेकिन मदर नेचर जो है वो आपको ऐसे ही हील करती है। वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड रहती हैं हर लेवल पे हमेशा के लिए। इसलिए जो प्रकृति है वो हमारा मित्र है और इसके अगेंस्ट कोई भी तर्क नहीं हो सकता। और प्रकृति के कुछ प्रायोरिटीज हो सकती हैं, और वो ऐसा ऐसी भी उनकी प्रायोरिटी हो सकती है कि जो ह्यूमन मनुष्य प्रजाति है वो सरवाइव करे, जिंदा रहे। इसलिए इसलिए मेरे पास भी इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है तर्क कि यूनिवर्स जो है वो दानी महादानी है। एक और प्रकृति में पहलू है पेन का, दर्द का। इसकी क्या जरूरत है? अगर लाइफ तो बहुत बढ़िया हो सकती थी यदि दर्द ना होता, तो क्यों इस दुनिया में पेन की जरूरत है? आप बताना चाहेंगे? किसी ने कहा सेंसेशन, अनुभव, लेकिन क्यों ऐसा अनुभव? ये तो सफरिंग है, ये तो दर्द है, इसके बगैर तो जीवन बहुत बहुत अच्छा हो सकता था। किसी ने कहा कि कंट्रोल है, ये दिखाता है कि कुछ ठीक नहीं है, इंडिकेशन है। हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दर्द है वो प्रकृति में है, इसलिए है ताकि हमको वो कोई मैसेज दे सके। अगर हम राइट पोस्चर में हैं तो फिर दर्द नहीं है, पेन, दर्द ये खत्म हो जाएगा। सिग्नल देता है ये दर्द, अगर मैं इस संदेश को इग्नोर कर दूं तो पेन जारी रहेगा और तब तक रहेगा जब तक मैं पोस्चर को चेंज नहीं कर सकती। और इसका कोई कारण नहीं है, नेचर बिना किसी कारण के आपको दर्द नहीं देती। यदि आप नियम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पेन नहीं होगा। तो सिग्नल बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं अपनी हड्डियां खुद ही तोड़ूं तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए पेन बहुत। तो अलग अलग तरीके के दर्द हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ जहरीला खा लिया है तो किस तरीके का दर्द होएगा? आप सूंघ नहीं पाए, चक्कर आ रहा है, ये सारे सिग्नल हो सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आप किसी खतरनाक परिस्थिति में जा रहे हैं। तो इस प्रकार सिग्नल से हम समझ सकते हैं कि दर्द से, जब दर्द आता है तो सिग्नल से हम समझ सकते हैं। तो जीवन में भी ऐसा ही है, इस प्रकार का माइग्रेन दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मे बी आपको अपनी डाइट चेक करनी होगी, जीवन लाइफस्टाइल, आपके जो पोस्चर हैं वो चेक करने होंगे। लेकिन जो बड़ा बेहद का सिग्नल मैसेज है कि हर प्रकार की जो पीड़ा है जिसमें बीमारियां आती है, हर प्रकार की जो बीमारियां हैं वे अपने आप में सिग्नल्स हैं कि कहीं कुछ रॉन्ग पोस्चर है और हमें अपना पोस्चर बदलना होगा। और यदि मैं अपना पोस्चर बदल लेता हूं तो सहायक होता है। कभी कभी आपको ऐसा पेशेंट मिलता है, मरीज, जो कहता है कि शायद ये डाइट मेरे लिए ठीक नहीं है, भले ही मैं थोड़ा खाता हूं तो मेरी बॉडी मुझे बताती है कि ये ठीक नहीं है। हम सभी ये नोटिस करेंगे कि अगर आप सिर्फ मुंह में ही कोई चीज डालें तो तुरंत ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए ठीक है या नहीं। और सूंघ के भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो कुछ प्रकार का सिग्नल अवश्य आता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इसको नजरअंदाज कर दें, जैसे कि हम प्रकृति के जो सिग्नल्स हैं उसके प्रति ब्लंट हो जाएं और उनका उत्साह ही ना बढ़ाएं उस प्रक्रिया का। और कुछ लोग तो इसको प्रमोट करते हैं, वे समझते हैं, सुनते हैं कि प्रकृति उनसे क्या कहना चाह रही है। तो कोई एक ऐसा कदम उठाता है, कोई भी एक सिंपल कदम हो सकता है, जैसे कि कोई एप्पल हो, सेब हो, और उस उसको खाने पे वो समझ जाए कि ये बॉडी के लिए सही नहीं है, और एप्पल की जगह फिर वो कुछ और बना के खाते हैं, तो उसका जीवन अच्छे से चलता रहे। नहीं तो फिर वो किसी बड़ी समस्या में फंस, जैसे आर्थराइटिस या कुछ और फिर ये समझ पाना कि क्या गलत हो उठा, ये मुश्किल पड़ जाता। तो फिर वो ये भी कह सकता कि हम आपका घुटना बदल देते हैं, तो सारी चीजें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये सब तो इसके अलावा एक इमोशनल पेन होता है, भावनात्मक दर्द। हमारे डिस्कशन के आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि क्या कारण है भावनात्मक दर्द का? उत्तर आ रहे हैं बंधन, ईगो, अटैचमेंट। आंसर सही है। जैसे ही हम इस लाल लाइन को क्रॉस करते हैं, तब आप गलत पोस्चर में चले जाते हैं। आप फिर से कैमल और एलिफेंट ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी दुनिया तो नहीं है, ये बस मात्र कहानी है और अपनी दुनिया तो अलग है। यदि आपने लाइन क्रॉस कर ली है और इसमें कुछ क्लेम करें कि ये मेरा है मेरा है, तो फिर आपका पोस्चर गलत हो गया और निश्चित तौर पे दर्द होएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, कह रहे होंगे कि ये मेरा है ये मेरा है, और हमारी कुछ आशाएं इस कहानी की दुनिया में होंगी। क्या किसी ने आप में से लाइन ये क्रॉस करी है? क्या इस राक्षस रावण की दुनिया में आप हैं ऐसे कोई? हाँ, अभी एक और प्रकार का दर्द है, अच्छा होता है जब हम दर्द के बारे में पहले से जाने हों, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। आप ऊपर से तो कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन अंदर से इस या उस प्रकार का दर्द है, तो क्या है वो? हमने बात की थी, दर्द जो शरीर से आ रहा है, पोस्चर गलत होने के कारण आ रहा है, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे कि बीमारियां। अलग तरीके का क्या और दर्द हो सकता है जो प्रकृति की तरफ से आ रहा है? इमोशनल पेन तो हो गया है, भावनात्मक वाला दर्द हो चुका है, अब अलग प्रकार का जो दर्द है वो है मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। इसे समझना अच्छा रहेगा, ये भी ऐसा दर्द है जो गलत पोस्चर के कारण आता है। ऐसा नहीं कि शनि गलत दिशा में है या फिर हमारे सितारे ठीक नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैं किसी गलत पोस्चर में हूं जिसके कारण दुर्भाग्य आया है, और ये हम सबके साथ ही है ऐसा, कि हम इसको समझ जाते हैं और जब हम इसको समझ जाते हैं, अपने पोस्टर को चेंज करते हैं, हमें सीक्रेट पता चल जाता है और कि हम कैसे भाग्यशाली बने। एक तरीके का फॉर्मूला कि हम लाइफ में लकी, जीवन में लकी कैसे बन जाए। तो आइए हम इस विषय पे आते हैं। हमने देखा पहले के डिस्कशंस में कि हमारी शुरुआती स्थिति इस प्रकार से है। यदि हम अदृश्य खिलाड़ी हैं और अदृश्य खिलाड़ी टेम्परेरी तौर पे इस हाथी की दुनिया को विजिट कर रहे हैं और नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से हम सोल कॉन्शियस हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है और सभी लोग ईगो में चले जाते हैं, तो ये भी हम भी ईगो में चले जाते हैं। ईगो के पास एक जॉब है। प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो पोस्टर गलत होगी कि ये अदृश्य खिलाड़ी क्यों स्टोरी में स्टक हो गया। प्रकृति यही समझती कि ऐसा यहां नहीं होना चाहिए। नेचर मदर प्रकृति बहुत मीठे शब्दों में कह सकती है, आपकी दादी माँ भी कह सकती है ऐसे मत करो ऐसे मत करो, लेकिन जो नेचर है वो सिर्फ दर्द ही दे सकती है। इस केस में किस तरीके का दर्द है जो इस ईगो को हटा सकती है? तो ये हेडेक हो या पेन हो शरीर में, वो ईगो को हटा नहीं सकता। ये ईगो है जॉब का कि मैं डिपार्टमेंट का हेड हूं, सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बॉस हूं, बड़ा बॉस हूं। किस प्रकार का दर्द इस ईगो को हटा सकता है? ये जो बिग बॉस है इस बढ़िया सी कंपनी में, सब जिसकी तारीफ करते हैं, और जो राजा है वह उसको एक बहुत बड़ा टाइटल भी देना चाह रहा है, ये रिस्पॉन्स आया है कि जब इस प्रकार का ईगो ईगो आता है और इसको हटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है कि उसको जॉब से हटाया जाए, कंपनी भी नहीं है तो फिर वो जॉब भी नहीं है। तो ये स्थिति जब आती है तो उसका ईगो ड्रॉप होने लगता है, गिरने लगता है। तो इस प्रकार का ये पेन मैकेनिज्म है, पेन की प्रक्रिया है, और वह स्थिति तब आती है, वह स्थिति आती ही तब है जब ईगो को रिमूव करना होता है, हटाना होता है। जो आपके सिर में चल रहा है उस प्रकार की परिस्थितियां आपके समक्ष आती हैं। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि गिरने से पहले घमंड आ जाता है, कि हम यहां देख रहे हैं कि जो घमंड है वह गिरावट को लेकर आ रहा है, और ये जो बवंडर आया है उसको विनाश फोर्सेस कहते हैं, ये विनाश के लिए आते हैं। और हर ईगो का एक अपना ही टेलर मेड विनाश फोर्स होता है। जैसे कोई ईगो क्रिएट करता है रिश्तों के आधार पे, तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो संबंधों की आती, अगर कोई वो पैसे से क्रिएटेड है तो जो कठिनाइयां होती हैं वो पैसों से आती हैं, ये मॉडल हमें बताता है कि नेचर के, मदर नेचर के पास ये एक बैलेंसिंग प्रक्रिया है। जैसे ही आप ईगो क्रिएट करते हैं उसी समय आप विनाश फोर्सेस को भी क्रिएट करने लग जाते हैं। ये पहले दिन से ही नहीं एक्ट करने लगता है, ऐसा होता है कि आपको चांस दिया जाता है कि मैं पोस्टर की पोस्टर चेंज हो, लेकिन यदि हम नहीं सुनते हैं तो अपने अपने टाइम पर विनाश फोर्स एक्ट करने लग जाता है। विनाश फोर्स का उद्देश्य है कि जो ईगो है वो पूरी तरह से चला जाए। आप में से किसी के हैं विनाश फोर्सेस, किसी के पास ईगो है सूक्ष्म लेवल पे, छोटे ईगो, बड़े या छोटे। नेचर चाहती नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का ईगो रखें। क्या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? प्रश्न जो आया है, भावनात्मक दर्द है वह बंधन है। जब सीता आराम से कनेक्ट होती है तो दर्द नहीं होता। जब कोई फीलिंग्स मिस कर रहा हो तो क्या कर सकता है ओके फील करने के लिए, ड्रामा से ओके फील करने के लिए वह क्या कर सकता है? जो ये बंधन है, ये कारण है, ये कारण है दर्द का। बंधन के कारण ही दर्द होता है। हमने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में पहले भी कि अदृश्य खिलाड़ी के लिए वह जीवन नॉर्मल है, ये उसका जीवन है। मैरी जो है वो खुद को मैरी देख रही है, उसकी जीवन है, उसके पेरेंट्स हैं, वो मेडिटेट नहीं कर रही है हर समय पे, ये उसके लिए नॉर्मल है इस पोस्चर में रहना। उसी प्रकार से ये बिल्कुल नॉर्मल है अदृश्य यात्री खिलाड़ी के लिए कि वो कॉन्शियस रहे, जागृत रहे और वो देख पाए इस कहानी को कहानी के तौर पे। ये नॉर्मल है ये जानना कि अदृश्य खिलाड़ी, उसका एक घर है, सूक्ष्म है वो और वो सच में है। हम ऐसा समझे कि ये जो दुनिया है वो बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल है अदृश्य खिलाड़ी के लिए, वह उसकी नेचुरल नेचर बन गई है। क्या आसारा को कुछ ऐड करना है या आप प्रश्न समझे हो तो? ये एक पोजीशनिंग है कि जो मेन कारण है वो ही आ रहे हैं। तो बॉडी अपने आप खुद को हील कर सकती है, ना कि डॉक्टर के पास जाया जाए। ये जान के बहुत अच्छा लगा, ऐसे कमेंट आया है। हमें दर्द चाहिए हैप्पीनेस और सुख अनुभव करने के लिए, दुख चाहिए सुख अनुभव करने के लिए, ऐसा है। उदाहरण है क्या, इसके बिना नहीं पहुंच सकते? उत्तर में अगर आप खुश हैं, हर 15 मिनट आप ऐसा अनुभव करते हैं, हर 15 मिनट आप खुद को शौक दें, शौक लेते हैं आप करेंट, ताकि आप 15 मिनट और खुश रह सकें। अगर आप खुश हैं तो आपको दर्द की जरूरत ही नहीं है पेन को हैप्पीनेस को अप्रिशिएट करने के लिए। पेन आता ही तब है जब हम गलत पोस्चर में रहते हैं। ये गलत समझ है कि हमको कंट्रास्ट चाहिए, विरोधाभास चाहिए। हम गहराई से समझते हैं कि हमारे लिए क्या नॉर्मल और स्वाभाविक है, क्या हमारी स्वाभाविक स्टेज है, और स्वाभाविक खुशी अत्यंत सुख हमारे लिए क्या है, ये नॉर्मल है हमारे लिए। यह अंदर से ही सही लगने लगता है जब हम राइट कॉन्शियसनेस में होते हैं, करेक्ट स्थिति में। ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान दुनिया में बहुत सारी चीजें नॉर्मल हैं, सोसाइटी हमारी समाज नॉर्मल है, लेकिन यथार्थ रूप में पूरी उल्टी है। लेकिन ये हमें नॉर्मल सबको नॉर्मल दिखता है, लेकिन अब हम ये देख पा रहे हैं कि अभी पूरा ही सब अब नॉर्मल हुआ पड़ा है, और नीचे से ऊपर ले जाना है उसको। जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है विनाश फोर्स के कंसेप्ट में, इस मॉडल में, कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये कलेक्टिव यानी संगठित रूप से आया हुआ विनाश फोर्स है, जो पूरे समाज है वे सभी एक ही सेम एक ही तरीके के आइडेंटिफिकेशंस में हैं। तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी, अलग लोग अलग प्रकार के सहने में अलग प्रकार से लोगों को सहना पड़ेगा, और ये इस पे आधारित होगा कि उनके दिमाग में अंदर क्या चल रहा है। और यदि समाज कुछ इस स्थिति में रहते, सभी लोग इसी स्थिति में स्टेज में रहते, तो बहुत ही असंभव होता कि कोई भी प्रॉब्लम आज की डेट में हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट भी करना चाहे तो वो असमर्थ हो जाएगा इस स्थिति में, यदि आप अंदर से इस प्रकार स्टेबल रहें, इस स्टेज में रहें सोल कॉन्शियस की, इस अंदर की अवस्था में। यह आमंत्रित करता है पॉजिटिविटी। दर्द कभी भी बिना कारण नहीं आता है, हमेशा किसी कारण के से ही आता है। हम ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो बहुत पॉजिटिव है और उदार है, और ये संभव ही नहीं है किसी के लिए कि दुख या परेशानी अनुभव की जाए। अगर ऐसा होता है तो ये इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ही कुछ ऐसे पहलू हैं जो इसको आमंत्रण दे रहे हैं। और भी एक फोर्सेस हैं जिन्हें हम कहते, ये जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं उन्हें फोर्सेस ऑफ ऑनर कहते हैं। नेचर आपको ऑनर करना चाहती है, आपको बेस्ट देना चाहती है, एक अच्छा है स्वस्थ शरीर देना चाहती है। नेचर आपको हेल्दी संबंध देना चाहती है और अति विशेष उपहार देना चाहती है। लेकिन जो स्थितियां हैं वे गलत पोस्चर की हैं। तो ये जो दर्द है ये पनिश नहीं कर रहा है, हमको सजा नहीं दे रहा है, लेकिन हमें सही होना सिखा रहा है। जो बच्चे हैं, जानवर हैं, लोगों को दर्द की जरूरत नहीं है। जैसे लेडी को कहती है कि ये खाना मेरे लिए सही नहीं है, और इस प्रकार वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देती है। अगर कोई बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करे कि ये तो हम लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ये तो खाना अनहेल्दी है और मुझे इस समय पीछे चले जाना चाहिए, और कुछ रावण के ऐसे मजे हैं जिन्हें मुझे रोक देना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में कोई विनाश फोर्सेस नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई सिग्नल को इग्नोर कर देता है और ये ऐसे ऐसी विपरीत चीजों को छोड़ता नहीं, रोक नहीं सकता, तो नेचर भी नहीं रुकेगी। तो हम या तो दर्द से या तो समझ से सीखते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि दर्द से पहले ही हम सीख जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है, क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अदृश्य यात्री हैं, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का यात्री है, और अगर ऐसा है तो एक से दूसरे को कौन, कैसे हम अंतर एक से दूसरे में लगा सकते हैं? अभी भी जैसे हम दो अलग प्रकार के यात्री हैं, आप अपने पार्ट में हैं प्लैनेट के दूसरे पार्ट में, मैं किसी और पार्ट में, हम दो अलग अलग यात्री और इस दुनिया से अपनी जगह पे इंटरैक्ट करें, कोई कैमल है।
वो अजर है और इसके पीछे कोई यात्रा ही नहीं है। हमारे अंदर एक प्रेम का बंधन है, हमारी कुदरती अवस्था प्यार की है, मगर हम अलग तरह के यात्री हैं। धन्यवाद। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनको क्यों ऐसी बीमारी आती है? वो इतनी अच्छी मेडिटेशन करते हैं फिर भी उनके साथ ऐसा होता है? प्रशांत भाई कह रहे हैं कि हाँ, मेडिटेशन करने वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, मगर अगर आपका आसन पोस्चर अगर सही नहीं है तो विनाश फोर्सेस, विनाश की ताकतें असर करती ही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब एक्यूरेटली आप सब कुछ कर रहे हैं, मगर रावण और माया भी हर समय तैयार हैं, हम हर समय जीतने के लिए। अगर ऐसी कोई ईगो की आइडेंटिटी, व्यक्तित्व अगर कहीं छिपा हुआ है पीछे, तो पेन होगा ही। किसी ने पूछा जैसे कि ब्रह्मा कुमारी की बहुत शक्तिशाली आत्माएं भी हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं, हम बहुत लंबे समय से इस स्पाइरल में डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते जाते जा रहे हैं। तो आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं तो वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है, नथिंग न्यू है, पहले भी ऐसा हुआ है। और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद ये हमको बताता है कि हमको कितनी कोशिश, कितना पुरुषार्थ यहाँ पर करना है, ताकि हम ये माया और रावण से स्वतंत्र हो सके। और अगर हमको इनसे फ्री होना है तो हमको अपने जो पेन के जो विनाश ताकते हैं उनको सेटल करना होगा, हिसाब किताब चुकतू हो करना होगा। प्रशांत भाई एक उदाहरण दे रहे हैं कि उनका एक मित्र है, वो बहुत अच्छी मेडिटेशन करती थी, वो फ्रांस में रहती थी। ये उसकी एक पर्सनल स्टोरी है, कहानी है, इसलिए ये इनको पसंद है। और अगर उनके बारे में बताएं तो वो बहुत अच्छी डांसर थी, गाती थी, बहुत फेमस थी, बहुत प्रशंसा की जाती थी उनकी। और उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में थी, और उनके मित्र उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और उसको अपना कि उसको मिरर दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं, क्योंकि उसने मंगाया था। जैसे ही वो मिरर में अपना चेहरा देखती है कि वो देखती है कि उनके सर पर एक भी बाल नहीं है, वहां शेव कर दिया गया है और पूरे चेहरे पर स्कार्स हैं, निशान हैं चोटों के, और सूजन है बहुत ज्यादा, और बहुत गंदा सा चेहरा दिखाई दिया। और उसके बाद से वो रोती रही, घंटों रोती रही, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिसकी वजह से वो फेमस है वही उनके पास नहीं रहा। और तब उनको ध्यान में आया कि अपनी अपने दिखावे, अपने चेहरे के दिखावे का उनको कितना अहंकार था। वो दूसरों को भी सिखाती थी मेडिटेशन, खुद भी मेडिटेशन करते हैं करती थी, मगर ये अहंकार कहीं छोटा सा पीछे छुपा हुआ था। वो कभी भी अपने बारे में बातें नहीं करती थी कि मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मगर लोग उनकी प्रशंसा करते थे। और वो ज्ञान में थी और ज्ञान के सब नियमों का पालन करती थी, मगर अब उनको समझ में आया कि उनका कितना बड़ा अहंकार उनके अंदर छुपा बैठा था। अब उनको ये समझ में आया, घंटों वो इसके लिए रोती रही। और जब वो हॉस्पिटल में थी कि उन्होंने समझा कि ये सिचुएशन, जो परिस्थिति उनके सामने आई है, वो एक विनाश की ताकत के समान है। और नेचर ने उनको ये विनाश की ताकत उनके ऊपर अटैक हुआ है। मगर कुछ लोग जब दर्द आता है तो उसको शायद समझ भी नहीं पाते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा ये परिस्थिति उनके सामने क्यों आई। मगर जब उस मित्र के सामने उसके मिरर लेके आए तब उसको समझ में आया कि ये मेरे अंदर अहंकार था अपने चेहरे को लेकर, और उन्होंने अपनी इस अहंकार को छोड़ दिया, उन्होंने ईगो को ड्रॉप किया। और वो ऐसे ही छुपके, जैसे कि पिछले दरवाजे से आ रहे हो, ऐसे विनाश ताकते हैं और पेन आता रहता है। और वो आता है हमको हेल्प करने के लिए, हमको बताने के लिए कि हमारे अंदर कहाँ छुपी बैठी है ये विकार और उनके अंश वंश। हम कैसे ये तरह तरह की ईगो से अपने आप को छुड़ा सकते हैं? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हमको इस यात्रा में शुरुआत करनी होगी वही मिनट्स मेडिटेशन के, ध्यान के क्रिएट करने होंगे, मगर गुणवत्ता से। और अगर आपको ये सब समझ में आ जाता है और तभी आप समझ पाएंगे ये अदृश्य यात्री कौन है, अदृश्य खिलाड़ी कौन है, ये अदृश्य प्रिंस कौन है। और माया इस समय पर आपकी प्रशंसा कर करके आपको इस तरह का बना देती है कि आपको इस गुप्त अहंकार का पता ही नहीं चलता। आप कितने भी सुंदर हो मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आप तो अजर अमर अविनाशी राजकुमार हैं और आप उस संसार से हैं जो कि प्यार और खुशी से भरपूर है। जैसे कि वो कहानी हमने सुनी थी कि डॉग जो है वो कैट फ्लैग को क्रॉस कर जाता है और वो अपनी जो जिंदगी है अपनी डॉग की जिंदगी उसको भूल जाता है। और ऐसा ही हम सब लोग कर रहे हैं कि जो फालतू की चीजें हैं उनमें अपने आप को फंसाए हुए हैं। और वापस आना और समझना ये सब उसके लिए कुछ मिनट ध्यान के क्रिएट करने होंगे, उत्पन्न करने होंगे, ताकि आप अपने पारस को मजबूत बना सकें, आप धीरे धीरे शक्तिशाली होते जाएं। और ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है, आप ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि आप ही परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ सीता को ही करना होगा, राम कुछ नहीं करेगा। राम हेल्प कर सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट स्टेप सीता ले तो 100 कदम राम हेल्प करेंगे, मगर पहला स्टेप सीता को ही लेना होगा, पहले निर्णय करना होगा और लेना होगा। क्या कहीं जहाँ काम करते हैं या किसी और कम्युनिटी में उनके पास बहुत बड़ी ईगो हो जो दूसरों को किसी के लिए किसी को बहुत ज्यादा बुली करते हो? कैम्ब्रिज में इससे रिलेटेड एक कैम्ब्रिज में एक प्रोग्राम था कि असेंबली में जो हेड टीचर हैं उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने कहा कि वो बुलिंग को मना नहीं करेंगे कि वो अच्छी है, मगर वो उस पर कंट्रोल रखते थे हेड टीचर। वो समझते थे कि ये अच्छा है बुलिंग करना। तो हो सकता है किसी कम्युनिटी में या किसी जगह काम करने की जगह पर या आपके प्रोफेशन में ऐसा कुछ होता हो, मगर हमारे सामने अगर सिचुएशन आती है तो हमको खुद ही उसको हैंडल करना है और अपने हिसाब किताब को चुपतू करते जाना है। हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं कि ये हमारे हिसाब किताब चुपतू हो रहे हैं और हम इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी के ऊपर इसका इल्जाम नहीं लगा सकते। और जब आप ये समझ जाएं कि आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं तो आपके सामने ऑप्शन है बदलने की। और ये आपके पास अवसर आते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां आपके सामने आती हैं उनको अपने पारस का इस्तेमाल करके उनको हैंडल करना, यही परिस्थितियां आपके हिसाब किताब चुकतू करने में हेल्प करती हैं। मगर अगर आपके सामने परिस्थिति नहीं आती है तो आपको नहीं पता चल सकता कि आपके अंदर छुपी हुए कोई अहंकार है, कुछ गुप्त विकार है। और ये परिस्थितियां ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को परिवर्तन करके आगे बढ़ने में। हमारे सामने परिस्थिति तो नहीं है, मगर हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की। तो क्या जब हम एक कदम ले तो भगवान हेल्प करेंगे, तो क्या वो सच्ची हेल्प होगी? और यहाँ पर एक रिएक्शन आया है चैट में, ये बात इसलिए सारा बैन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग प्लेस क्या आज की डेट में भी होता है? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। प्रश्न तो है, मगर क्या हम बोर्डरूम के लिए ब्रेक लें? तो क्या ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कभी मैसेज जो है पेन आपको देता है उसको कभी अनुभव किया है? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसके लिए एक अलग ही लंबी सी रिट्रीट करनी होगी। तो कि क्वेश्चन यही रखते हैं, बोर्डरूम के लिए रखते हैं जहां ये डिस्कशन की जा सकती है। और ये भी कि हम इसके ऊपर एक रिट्रीट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है रूम डिस्कशन के लिए कि आपने कभी मैसेज ऑफ पेन को अनुभव किया है और उसको कैसे समझा है? और 10 मिनट आपको मिलेंगे कि आप इस संभावना को समझें। अगर आपने नहीं महसूस किया है उसके बारे में चर्चा करें और शेयर करें एक दूसरे से, और फिर बताएं। और ये भी कि हम कैसे अपने पोस्चर को जल्दी से बदल सकते हैं और इसमें गंभीर भी रहें इससे पहले कि पेन हम पर आए। माइंड में मेरे ये सूक्ष्म चीजें जो पैदा हो रही हैं, यही मेरे को सिग्नल देती हैं जिनको कि मैं अनुभव कर सकती हूँ। जैसे कि प्रशांत भाई कहते हैं कि आप अपने माइंड में फूड की बात करें, तो कुछ आपके पेट में होता है और एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं और यही इच्छा को उत्पन्न करते हैं फूड के लिए। और उसी समय पर हम अपने आप हम एक पाठ सीखते हैं जिससे जिससे कि हम अपने आप को गलत तरह के फूड से बचा सकते हैं। और यही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से और पेन से हमको बचा सकता है। और जैसे ही आपको कुछ समझ में आता है, आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप को इस पेन से दूर करने के लिए। और देखें तो नेचर, कुदरत ही हमको इन सब में मदद कर रही है। और प्रशांत भाई को स्वागत करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं और अच्छा लगेगा कि आप अपनी शेयरिंग यहाँ पर बताएं। जैसे कि हम कुछ ध्यान के क्षण बनाते हैं अपनी पोजीशन को करेक्ट करने के लिए, श्रेष्ठ चेतना में जाने के लिए, सबसे श्रेष्ठ संभावना में अदृश्य खिलाड़ी के जाने के लिए। और वो उसको पता चलता है कि सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है, उसका संसार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। और इस मोमेंट पर जो अदृश्य यात्री है वो समझ जाता है कि वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। उसका संसार अविनाशी है, उसका परिवार भी परिवार के सदस्य भी सब अमर हैं, सब महान हैं और सब आत्माएं हैं। और आत्मा होना एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि एक फरिश्ता एंजल, वो हो सकता है कि होश में हो या ना हो, वो सत्य को जानते हैं या नहीं जानते, मगर फिर भी वो सबके सब सम्मान के अधिकारी हैं। और जब हम ये सब बातें करते हैं तो इस समय में पारस का इस्तेमाल हो रहा है। पारस ये सब देख सकता है, वो इस ग्रह के दूर की सत्यता को देख सकता है। और नहीं तो इस वर्तमान के संसार में तो हम फंसे हुए हैं। और ये संसार कैमल और एलिफेंट की कहानी जैसा हो गया है। इस वर्तमान की स्थिति में हम ऐसे ही हो गए हैं। और ये हमको ये समझने में मदद करता है कि हर कोई अच्छा है, हर कोई भाग्यशाली है, क्योंकि हम पूरा का पूरा बड़ा मापचित्र देख पाते हैं। हम जानते हैं कि ये एक थिएटर चल है जहां पर कि अलग अलग उप कहानियां चल रही, उप कथाएं चल रही हैं, एपिसोड्स चल रहे हैं। और यहाँ पर कैमल और एलिफेंट भी कितनी कितनी वैरायटी के हैं। हम इस खेल को पहचानते हैं, जानते हैं और हम समझदारी से इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानते हैं कि हमको अपने पोस्चर को, अपने आसन को बदलना है, परिवर्तन करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने इसे समझ लिया है, मगर ये कि कहानी में मुझे कैसे परिवर्तन करना है और कैसे रिएक्शन देना है वो भी समझ में आता है। और ये बहुत मजेदार है और ये हमारी यात्रा बहुत फन वाली हो जाती है। और ये हमारी यात्रा प्यार की है, जिसमें कि हम जान पा रहे हैं कि सच्चे सच्चाई क्या है इस सब खेल की, इस कहानी से और इस खेल की दुनिया से परे। और हम जानते हैं कि ये यूनिवर्स पॉजिटिव है, पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव है। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस या कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बताएं। क्या ये जो क्लाइमेट चेंज का जो क्वेश्चन है, क्या ये क्या सबका मिला हुआ बिना संकल्पों से की वजह से ही ये विनाश फोर्स आ रही है? तो विनाश फोर्स क्रिएट करने के लिए किसी एक के करने से भी होगा और वो किसी भी तरह से आ सकता है, एक तरह से या दूसरी तरह से, मगर यहाँ पर उसकी जड़ को ही खत्म करना होगा। क्या ये सम्मोहित विनाश को ताकत है? क्या पेन जो है वो कार्मिक अकाउंट्स की वजह से है और ये फिजिकल बॉडी पर असर करता है? प्रशांत भाई कह रहे कि कार्मिक अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि ये विनाश की ताकतों की वजह से है। ये कार्मिक अकाउंट को आध्यात्मिक रूप से समझने का तरीका है। जब हम रावण को नरिशमेंट देते रहते हैं तभी हमारे कर्म बनते हैं, कार्मिक अकाउंट बनते हैं। जब हम एक स्टेप लेते हैं तो राम हेल्प करते हैं, क्या ये सच है? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ, ये उनका प्रॉमिस है, आपसे वादा है, और नेचर भी इसी तरह से हेल्प करती है। अगर आप किसी को देखें कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसको खाना चाहिए, और दूसरा जो है वो सिर्फ खाना ही खाना मांगता रहता है, मगर जो जो बहुत काम कर रहा है वो अपनी हेल्प खुद कर रहा है, तो ऐसे ही नेचर उसकी हेल्प करती है। ये जो क्रॉनिक दर्द फिजिकल बॉडी में होते हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से? ये तरह तरह के जर्म्स होते हैं, मैं उनको एनालाइज कर सकता हूँ, मगर मेडिसिन तो एक ही है सब तरह के बग्स के लिए, जर्म्स के लिए। और उसके लिए हमें करना के हमको चैतन्य होना पड़ेगा, बेहोशी से उठना होगा, वही ये सब कार्मिक अकाउंट चुकतु करेगा। प्रैक्टिस मेडिटेशन करें और पारस का इस्तेमाल करें। और एक मनुष्य आत्मा की बात कर रहे हैं कि बचपन से उसको आस्थमा था और अब वो बहुत बड़ी उम्र की हो गई है, अभी उनसे पूछो तो उनको नहीं है कि उन्होंने जो जड़ की आस्थमा की उसी को रिमूव कर दिया, उन्होंने रूट लेवल पे काम किया उसके लिए। जब जब जड़ ही हटा दी तो विनाश की ताकत भी हट गई। और डॉक्टर्स का कहना है ऐसा नहीं होता ये अस्थमा ही गायब हो जाए बॉडी से, मगर इस केस में हुआ, उस लेडी का अस्थमा खत्म हो गया, और वो सब प्रैक्टिस करने से। क्या विनाश की ताकतें और कार्मिक अकाउंट एक ही बात है? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ, कार्मिक अकाउंट शब्द हम यूज करते हैं बहुत सारी बातों के लिए, चीजों के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, मगर सीरियसली जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप पर बात करें तो ये कार्मिक अकाउंट जो है वो रॉन्ग पोस्चर, गलत आसन की वजह से और रावण को नॉरिशमेंट देने की वजह से है। नेचर का जो सिग्नल है वो हमारी चेतना की तरह ही है। मदर प्रशांत भाई कह रहे हैं कि बाहर से ही कोई सच में कोई फिजिकल सिग्नल आपको आता है जो आपको ये बताता है कि ये विनाश की ताकत है। हम रावण को नॉरिशमेंट नहीं देते तो क्या हम विनाश ताकत को रोकते हैं? तो हम हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, अगर आप रावण को फीड नहीं करते, उसको नॉरिशमेंट नहीं देते, तो आपके अच्छे कर्म हो जाते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही लकी होते हैं, वो पैदा होने से ही लकी होते हैं, सब कुछ उनको अच्छा ही अच्छा मिलता है, और कई देश उनकी जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होता चला जा रहा है, इसके पीछे बहुत गहराई की बातें हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये कर्मा ही है। किसी ने कहा कि हाइंडसाइट इज अ वंडरफुल थिंग, कि अगर आप पीछे की बात करें तो वो अच्छा है। आप पुरुषार्थ करते हैं इनको पहचानने की, मगर कब और कैसे ये हमारे पोस्चर को चेंज करेगा जब तक कि पेन ना आ जाए पहले? तो इसके लिए क्या मुझे फ्यूचर में देखना होगा, मुझे कौन से सिग्नल की तरह के बारे में सोचना होगा? तो मैं क्या कुछ झूठे सिग्नल्स को पहचानती हूँ अपने ईगो के बेस पर? जैसे जैसे आप ये मेडिटेशन के क्षण बनाते हैं तो धीरे धीरे आप एक्यूरेसी से इन सब बातों को समझने लगते हैं। आप अवेकन्ड हैं, आप चैतन्य हैं, और आपको ये सिग्नल्स बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। जैसे कि किसी को बीमारी में गलत मेडिसिन देने पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको सही रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। और आपको ये कंट्रास्ट भी समझ आएगा कि ये सही सिग्नल है या गलत सिग्नल है। बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है, कंट्रास्ट आपको दिखाई देने लगता है। आप थोड़े समय के लिए भी किसी बात को अगर महसूस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये रावण की वाइब्रेशंस हैं या राम की। तो ये कंट्रास्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, और तब ये हमें समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही। और ये भी कि राम की वाइब्स जो है वो पॉजिटिव हैं और रावण की नेगेटिव। किसी ने रिक्वेस्ट किया, कुछ और उदाहरण देंगे जिससे कि उनको क्लैरिटी मिलने में हेल्प हो? क्या अविनाश की ताकतों की उदाहरण? तो प्रशांत भाई एक और उदाहरण दे रहे हैं। कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट थी, वो साइंस ग्रेजुएट थी। उनको पता चलता कि उनके कनेक्शन में किसी की मौत हो गई है और उनको वर्षे में मिलियंस मिल गए हैं। बहुत कुछ उसे मिलता है, बिजनेस मिल जाता है, बहुत सारे घर मिल जाते हैं, वो बहुत अमीर हो जाती हैं। और वो जब स्टूडेंट ही है, जब उसको ये सब मिल जाता है, उसके लिए सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, इतना पैसा मिल जाता है, और ऐसे में उसको अहंकार आ जाता है। वो अपने शब्दों में खुद बताती है कि मुझे अहंकार आ गया था। और कुछ सालों के बाद उसको बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम्स होने लगी। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, बहुत कुछ होने लगा इस कंट्री में, और उसको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, उसको बैंक से लोन लेना पड़ा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मगर फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। और जितने भी बैंक से उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने सब कुछ उसका अपने कब्जे में ले लिया और उसका सब कुछ खो गया। इस वर्षे के मिलने से पहले वो एक रेंट के घर पर रहती थी। और उस अब भी वो वापस एक रेंटेड फ्लैट में आ गई और उसका भी किराया नहीं दे पा रही थी। वो बहुत ज्यादा महसूस कर रही थी इस बात को, तो वो अपनी खिड़की से देख रही थी। उन्होंने एक बेघर औरत को देखा। तो उन्होंने सोचा कि अब अगर बैंक वाले आएंगे तो वो कहेंगी कि इस घर की चाबी मांगेंगे तो मैं दे दूंगी, मैं फिर दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। और उस टाइम पे जब उन्होंने ये तय किया, उनका कहना है कि उन्होंने ईगो को मार दिया। उस समय उनकी ईगो खत्म हो गई। और इससे पहले वो कहती है कि हाँ, मुझे समझ में आता था कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फेमस सक्सेसफुल देखा करती थी, मेरे अंदर ये ईगो थी, मैं ये खरीदूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी। और अभी वो सबसे बोरो कर रही थी मनी, और अभी उनके अपने शब्दों में कि मैं तो बेघर हूं और अब मैं सड़क पर आ जाऊंगी, जैसे कि वो बेघर औरत जो सामने उसको खिड़की में दिख रही थी। उस मोमेंट में उन्होंने अपनी ईगो को मार दिया। और उनका कहना है कि तभी कुछ चेंज ऐसा आया कि सब बैंक जो है, उन्होंने उनको कांटेक्ट करना शुरू किया, उन्होंने उनको चिट्ठियां लिखनी शुरू करी। तो वो बैंक के पास वापिस जाती है और पता करने के लिए कि ये पॉलिसीज क्यों चेंज कर कब चेंज की। तो उनको पता चलता है कि जब उसने अपनी पॉलिसी यानी कि अपने ईगो को खत्म किया, उसी टाइम पे बैंक्स ने भी अपनी अपनी पॉलिसी चेंज की। तो वो जान गई कि अब विनाश ताकतों की उस पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ईगो था तो विनाश की ताकतें बढ़ती ही चली जा रही थी, और ईगो ईगो को मारने पर विनाश ताकतें भी खत्म हो गई। मगर जब उनको ये महसूस हुआ, 6 महीने तक वो ये पेन बर्दाश्त करती रही, उनको समझ में आया कि ये एक पार्ट था जो उन्होंने खेला और अब वो खत्म हो चुका है, पास्ट हो चुका है, और अभी ईगो जा चुकी है और अब उन्हें उन्हें विनाश ताकतों की आवश्यकता नहीं है और वो एक नया पार्ट अब वो प्ले करेंगी। इस केस में 6 महीने के बाद उसको समझ में आया, एक दिन के बाद भी उन्हें उनको समझ आ सकता था, पेन आने से पहले अपने आप को समझ सकती थी, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो समझ ही ना पाती हो और विनाश की ताकतें आती ही रहती उनके पास। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती, कोई भी संभावना हो सकती है इसमें। ये बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है ये विनाश ताकत का, और वो इस कनेक्शन को देख भी सकती थी, ये बैंक की पॉलिसी और उनकी ईगो का कनेक्शन। उन्होंने ये शब्द भी यूज किया, ईगो डेथ। जैसे ही ये ईगो डेथ हुई, वैसे ही प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई। क्या आप कोई होमवर्क देंगे? रिफ्लेक्शन के लिए कोई क्वेश्चन देंगे कि हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी रिफाइनमेंट करें, कि ये इनविजिबल प्लेयर कौन है? क्या वो अनपॉल्यूटेड कैसे हो सकता है? जैसे कि यहाँ प्रशांत भाई जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, क्या अनपॉल्यूटेड इस समय पर उस इनविजिबल प्लेयर अदृश्य यात्री को देखा जा सकता है? कुछ ही सेकंड्स में या मिनट्स में आप इसको महसूस करें, और जैसे जैसे आप देख पाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, सोल की, आत्मा की, मगर ये ईगो जो है ये बहुत हठी है, आसानी से जाती नहीं। जैसे कि आइंस्टीन का कहना है कि 55 मिनट एक घंटे में उन्होंने क्वेश्चन को समझने में लगे और सॉल्यूशन इतना सिंपल था कि उन्होंने 1 मिनट में उसका आंसर पा लिया। दैट रिफाइनिंग अभी हमको करनी है, ये समझना है। कुछ प्रश्न हैं जो हम कल के लिए रखते हैं, कल लेंगे उनको, तो अभी इसी का रिवीजन करें। आप स्क्रीन पर लोकल सेंटर का एड्रेस देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वो सब कुछ दिया है और चैट बॉक्स में भी लिख दिया है और लिंक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीकेंड पे हम 2 दिन का और सेशन करेंगे, ये 10 दिन का पूरा सेशन हो जाएगा।
जी आ गए तो
कौन
हॉर्टिकल्चर वाला
आया था
बेचारा,
कुछ दे ही देते उसको तो तुम दे देते ना कुछ, तुम्हें क्या था देने में हाँ? क्या गजक का पूरा पैकेट पड़ा हो तो उठा के दे देते हाँ? चला गया कि बैठा है जूस मक्खी जूस राजीव, अब जो है चाय जो गुड़ या शक्कर से बनेगी, चीनी नहीं डालेगी ठीक है?
नहीं
हाँ क्या कह रहे हो?
कुछ
हाँ चीनी चीनी मत करना, कावा पीने तो कावा दे सकते हैं शक्कर के साथ, कावे लाए मैं बहुत सारे, छोड़ेगा खाना हो गया है, हाँ जी छोटे का खाना हो गया कहीं जा काय में लगाऊं?